दिया. एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. आहोजी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी. एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप. 519-622-0660 या quicktrucklube.com. QTL because we care. Quick Truck
Lube. यूके स्विट्जरलैंड अते इटली तो बाद खालिस्तान रेफरेंडम दियां वोटां दा अगला पड़ा कैनेडा. कैनेडा विच खालिस्तान दियां वोटां दा पहला सेंटर ब्रैम्पटन विच लगेगा. ब्रैम्पटन विच खालिस्तान दियां वोटां 18 सितंबर दिन एतवार नूं गौर रोड ते स्थित गौर मैडोज कम्यूनिटी सेंटर विच सवेरे 9 बजे तो लैके शाम दे 5 बजे तक पैणगियां. होर जानकारी लई संपर्क करो 437-423-2669 जां 437-423-2666.
ईस्ट और वेस्ट एंड में बेस्ट चॉइस टैक्सी और स्कार्बरो सिटी कैब अब बन गई है एक लार्जर टैक्सी कंपनी टोरंटो वन टैक्सी, जो ऑफर करते हैं कैश कॉल्स, कॉर्पोरेट अकाउंट्स, अ लार्ज टीटीसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सिटी वाइड सेडान टैक्सी वर्क एंड स्टिकर्स फॉर एयरपोर्ट पिकअप ड्यूरिंग पीक टाइम. टैक्सी ओनर्स और ऑपरेटर्स के लिए इनके पास है मुस्तकम आमदनी बनाने का शानदार मौका. सिर्फ इस महीने सितंबर 10 तक ब्रोकरेज ड्यूज में जबरदस्त डिस्काउंट हासिल करें. कॉल 416-252-7777.
द मोस्ट ग्लोरियस, द मोस्ट एक्साइटिंग, द मोस्ट स्टार-स्टडेड इवनिंग इज रिटर्निंग फॉर इट्स 8th एडिशन. Hum Awards, once again in Canada. On 24th September 2022, First Ontario Centre. To book your tickets, log on to www.ticketmaster.ca. For Canadian sponsorship, please call 905-849-5551 or log on to humawards.ca.
ब्रैम्पटन ट्रांजिट में सफर करने वालों के लिए एक जरूरी ऐलान. ब्रैम्पटन ट्रांजिट अपने रूट्स और स्केड्यूल्स में कुछ चेंजेस ला रहा है ताकि आपकी बेहतर खिदमत की जा सके. इन चेंजेस को आप महसूस करेंगे ट्यूसडे सितंबर 6 से, ताकि स्कूल शुरू होने से पहले आपको तमाम मालूमात दी जा सके. ज्यादा जानकारी के लिए विजिट कीजिए brampton transit.com या लाइव एजेंट से बात करने के लिए कॉल करें 9058742999 या हमें फॉलो करें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे @brampton transit.
अच्छा जी, अभी जो हमने आपको ताइवान की खबर सुनाई है कि जी ताइवान जो है वो अब जरा थोड़ा सा एग्रेशन दिखा रहा है चाइना के अगेंस्ट, इसके बीच में जो बाइडन साहब हैं उन्होंने आज कहा है जी कांग्रेस को कि 1.1 बिलियन यूएस डॉलर का आर्म्स सेल जो है वो अप्रूव करें जो कि हम ताइवान को दे सकते हैं. पता नहीं बाइडन साहब की दुनिया का बनाना चाहते हैं गड़म्बा जया. तो वो कह रहे हैं जी कि ये इसके अंदर हम इनको देना चाहते हैं 60 एंटी शिप मिसल्स, 100 एयर टू एयर मिसल्स और जो है 60 AGM 84L हार्पून ब्लैक ब्लॉक टू मिसल्स, जिसकी के कीमत है 355 मिलियन, 100 AIM-9X ब्लॉक टू साइड विंडर टेक्टिकल एयर टू एयर मिसल्स, जिनकी कीमत है 85.6 मिलियन, 655.4 मिलियन के सर्वेलेंस रेडार कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ये देना चाहते हैं उसको. तो लोगों ने कहा जी पायन अपनी हालत थोड़ी बड़ी खराब है. उन्होंने कहा जी ठीक है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अपने एयरलाइंस को बचाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना होए कि चाइना जो है वो ताइवान को कंट्रोल कर ले. इसके लिए हमने ऑलरेडी अपने वॉरशिप्स जो हैं स्ट्रेट ऑफ उसमें ताइवान में भेजे हुए हैं, और हमें लगता है कि हौले हौले चाइना जो है इनके ऊपर एनक्रोच करना शुरू करेगा. तो ये आप करें. तो अब वैसे तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि लेजिस्लेटर्स जो हैं वो सारे इसको अप्रूवल दे देंगे, लेकिन फिर भी ये जो है फॉरेन अफेयर्स कमेटी जो है कांग्रेस की उसके पास जाएगा, वो इसके ऊपर बात करेंगे. पता नहीं बात क्या करेंगे. बहरहाल जी लगता तो ऐसे ही है कि जैसे ये जो है इसको अप्रूव कर देंगे तो उसके बाद जो है जी ये पता चलेगा. अच्छा जनाब, एक हमारे पास आज एक बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट है जो हम आपको देंगे, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स के में आई है, और ये एक शॉकिंग न्यूज है, बट ये स्पेशल रिपोर्ट है जो हम खबरों के बाद आपको देते होते हैं. ये नेवी सील्स जो हैं अमेरिका के ये जो जिन्होंने जाके ये सारे ये जो ड्रामे करते हैं दुनिया में, उसामा बिन लादन को जी हमने मार दिया, इसको मार दिया, उसके ऊपर है इनके अपने अंदर जो है क्या चल रहा है, इन सील्स के अंदर इन लोगों को कैसे ट्रेन किया जाता है, ये बहुत ही आज जो है एक इनकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है जो हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन पहले हम अपनी दूसरी खबरों की तरफ जाएंगे, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, ये आज स्पेशल रिपोर्ट है इसके ऊपर। रॉयटर्स की एक खबर है जी, और इसके मुताबिक जो यूएस कैपिटल के ऊपर राइड्स हुए थे जनवरी 6 को, जबकि कांग्रेस बैठी हुई थी बाइडन साहब को इलेक्ट करने के लिए, तो ये बाहर सारे इन्होंने लोगों ने हंगामा शोर मचाया था जो कि मोस्टली अलेजली कहा जाता है सपोर्टर्स थे ट्रंप साहब के। उसमें एक जो आदमी है उसको, वो प्राउड बॉयज से उसका ताल्लुक है, उसको 4 साल और 7 मंथ्स के लिए जो है प्रिजन की सजा दी गई है। और इन्होंने, इसका नाम जो है जोशुआ प्रूट है, इसका 40 साल उम्र है, मैरीलैंड का रहने वाला है। तो ये उस वक्त हुआ कि जिस वक्त पुलिस जो थी सेनेट मेजॉरिटी लीडर चक शूमर को, जिनकी की एज 70 इयर्स है, उनको लेके जा रही थी और ये लोग अंदर घुस आए थे और पुलिस ने इसको आइडेंटिफाई किया था और उन, वो समझ गए थे कि ये जो है आदमी सही नहीं है, तो एकदम से वो लेके इनको भागे थे और उनको बचाया था। तो ये जो है अब वो हौले हौले, जैसे ही वो अपने वो वीडियोस देखते जा रहे हैं उस दिन की, तो उस तरह से ये पकड़ते जा रहे हैं। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज टिमथी कैली जो है उन्होंने कहा है कि जी इनको सेंटेंस दी जाए, क्योंकि ये कुछ भी खतरा जो है ये पैदा कर सकते थे चक शूमर के लिए। तो ये पहला आदमी है जी जिसकी कि अब सजा हुई है, तो इसके बाद लगता है कि और भी अब सजाएं जल्दी जल्दी जो है वो सामने आएंगी और सुनाई जाएंगी। अच्छा जी, पाकिस्तान में तो फ्लड से जो है पैड़ा हाल थे बांके दिहाड़े, लेकिन ये अमेरिका में भी जो है काफी बुरा हाल है। मिसिसिपी का जो एक एरिया है वहां पे बेतहाशा जैक्सन के एरिए में फ्लड्स आए हुए हैं और हालत जो है बेनतहा खराब है, इतनी बुरी हालत है। हालांकि ये सिटी जो है ये जैक्सन का, इसमें सिर्फ 150,000 लोग रहते हैं, लेकिन फ्लड का पानी और दूसरा गंद मंद इतना मिक्स हो गया है कि लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल सक रहा है। तो लोग वहां पे हंस रहे हैं कि वाटर जो है वो ऊपर भी है और वाटर नीचे भी है, लेकिन कोई भी वाटर जो है वो यूज करने वाला नहीं है। मिसिसिपी के गवर्नर जो है टेट रीव्स, उन्होंने कहा है कि हम स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को हम हायर कर रहे हैं, क्योंकि एक ट्रीटमेंट प्लांट इनका खराब हो गया है, तो उसको फिक्स करें और ये साफ पीने का पानी जो है ये लोगों के लिए फौरन जो है मुहैया कराएं। तो अब ये पता चलेगा कि ये इसके ऊपर कितना काम होता है और ये कैसे जो है चीजें आगे चलेंगी। ब्लूमबर्ग की जनाब आज एक रिपोर्ट है, और बहुत दिनों से अब हम आपको बता रहे हैं कि ये जो ट्विटर का विसल ब्लोअर है पीटो जैटको, जिसने के जिसकी के रिपोर्ट पे कल पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने भी बड़ा जो है वो किया कहा जो है वो कंसर्न शो किया है कि भाई अगर ट्विटर के अंदर प्रोटोकॉल्स जो है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो है उनको नहीं फॉलो किया जा रहा और उसमें ब्रीच है, तो कोई भी जो है वो उसके अंदर आके उठा सकता है, खासतौर पर उस सूरत में जबकि इसने जो है पीटो जैटको ने कहा कि जी इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ा जोर दिया था ट्विटर इंडिया को कि हमारा एक गवर्नमेंट का एजेंट बिठाओ ताकि वो सारी मॉनिटरिंग इसकी कर सके। उसके रहते हुए जनाब ब्लूमबर्ग की ये जो रिपोर्ट है एलन मस्क साहब के पास है, वो कहते हैं जी मैं तो पहले दिन से ही कह रहा था कि कुछ घोटाला चल रहा है इसके अंदर ट्विटर के अंदर, और मैं कह रहा था आप लोगों को कि मुझे दिखाएं आप ये सारा कुछ कि क्या तुम्हारे प्रोटोकॉल्स हैं, और इसीलिए मैंने कहा था कि प्रोटोकॉल्स दिखाओगे तो मैं ये $54 बिलियन का टेक ओवर जो है ये मैं करूंगा, लेकिन अब आप मुझे नहीं दिखा रहे हैं तो मैं नहीं करूंगा। ट्विटर के जो लॉयर हैं उन्होंने कहा जी कि ये जो हमारी टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट था उसके अंदर ये चीजें नहीं लिखी हुई थी, और अब ये बिला वजह उसको टर्मिनेट कर रहे हैं डील को और उससे पीछे हट रहे हैं, जो कि इनका बिल्कुल वैलिड नहीं रीजन है, ये बिल्कुल रॉन्गफुल है अंडर द डील। लेकिन इसके होते हुए जो ट्विटर के शेयर्स हैं वो 1.3% गिर चुके हैं, और ये मस्क साहब जो थे इन्होंने इनकी प्राइस ऑफर की थी 54.20 पर शेयर, लेकिन अब इनकी कीमत जो है आज जो न्यूयॉर्क में खुली है दैट इज $39.50, तो मतलब है काफी गिर गई है और उससे काफी इनको नुकसान है। ट्विटर ने कहा है कि ये जो जैटको के कंप्लेंट्स हैं ये बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव हैं और ये बिल्कुल सच नहीं है। बहरहाल जी अब पता चलेगा क्या सच है तो क्या नहीं। इंडिया के अंदर जनाब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है उसने आज इंडिया के अंदर औरतों के ऊपर कितने जुल्म होते हैं और क्या क्राइम्स अगेंस्ट विमेन कितने हैं उसकी आज ये, और ये कोई न्यूयॉर्क टाइम्स वाशिंगटन पोस्ट डॉन न्यूज की न्यूज नहीं है, ये खुद इंडिया की जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है जिसके के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालांकि बहुत ज्यादा ये शेड करती है लाइट जो क्राइम्स होते हैं अगेंस्ट विमेन इन इंडिया, फिर भी ये सब सच नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये एक आइडिया देगा। According to India's National Crime Records Bureau, 31,677 rapes जो हैं वो रजिस्टर किए गए थे इंडिया में 2021 में 87 रेप केसेस, जिसका के मतलब है एवरी सिंगल डे ऑन एवरेज. राजस्थान जो है वो टॉप पे है इसमें, उसके बाद मध्य प्रदेश है और फिर जो है यूपी है. 19.3% इंक्रीज आया है रेप्स में लास्ट ईयर से. और यहां पे क्राइम्स अगेंस्ट विमेन जो है 4,28,278 जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं, विच इज 13.2% राइज इन क्राइम्स अगेंस्ट विमेन इन 2021 कंपेयर टू 2022. इसके के अंदर वो कहते हैं जी कि इनके ऊपर जो अटैक्स और जो इनको रेप और जो इनको जो है वो किया गया उस वो डोमेस्टिक वायलेंस की गई, उसमें कोई ना कोई इनका जानने वाला जो था वो इन्वॉल्व था. और इसमें वो कहते हैं जी कि राजस्थान जो है उसमें 19% ज्यादा रेप्स जो हैं आए हैं, उसके बाद राजस्थान में आए हैं, फिर जो है मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में आए हैं. हर जगह पे 2000 से 6000 से ऊपर रेप केसेस जो हैं वो किए गए हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में और फिर उसके बाद जो है दूसरी सिटीज में. जो सबसे कम रेप्स जो हैं जो इंडिया में रिकॉर्ड 2021 में किए गए थे वो नागालैंड में थे 4 और सिक्किम में थे 8. इसके अलावा जो डाटा ये रिवील करता है कि ये ऑफेंडर्स जो थे जिन्होंने कि ये रेप किया वो मोस्टली नोन थे, यानी कि 89% ऑफ दीज रेप्स वर कमिटेड बाय फ्रेंड्स, लिव इन पार्टनर्स, हस्बैंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर्स, पीपल नोन टू विमेन. जिसमें कि वो कहते हैं जी कि 64% केसेज अगेंस्ट विमेन जो थे वो 18 से 30 के एज में जो औरतें थी उनके अगेंस्ट था, और दिल्ली इसके अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर पे था. दिल्ली में जो टोटल क्राइम्स हुए हैं विमेन के अगेंस्ट वो 32.20% हैं कंपेयर टू अदर स्टेट्स. महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल जो हैं उसके राजस्थान के बाद आते हैं इसके दिल्ली के बाद. वो कहते हैं जी 31.8% क्राइम्स अगेंस्ट विमेन जो थे वो रिपोर्ट किए गए थे अगेंस्ट हस्बैंड्स एंड रिलेटिव्स एंड पीपल नोन टू विमेन. और क्राइम रेट जो था वन केस रजिस्टर पर 1 लाख विमेन पॉपुलेशन हैज गॉन अप 64.5%. तो इसमें आज जो है बहुत ज्यादा कंसर्न शो किया गया है हिंदुस्तान में जो क्राइम का रेट है अगेंस्ट विमेन उसके लिए. तो ये जो है आज बड़ा इसने जो है खलबली वहां पे मचाई है. हिंदुस्तान के अंदर एक और बच्ची थी 16 साल की, अंकिता उसका नाम है, धुमा की झारखंड की रहने वाली थी. उसके के बारे में कहा गया कि उसका एक मुस्लिम स्टॉकर था एक लड़का शाहरुख हुसैन, जिसकी की उम्र 23 थी, जो कि इसके बड़ा इसको चाहता था, इसके पीछे आता था. तो रात को ये सो रही थी तो एक खिड़की जो इसके कमरे की ओपन थी उसमें से इसने इसके ऊपर तेल फेंका है अलेजली, जिसकी की वजह से ये बच्ची जल के मर गई. ये भागी अपने बाप के पास हेल्प के लिए और कहती रही बाबा मुझे बचाओ, जो कि ग्रोसरी स्टोर में काम करता है और 324 रुपीस पर डे का दिहाड़ी का मजदूर है. वो इसको हॉस्पिटल लेके रश किया लेकिन वहां पे ये नहीं बच सकी. वहां पे जो बीजेपी के लीडर्स हैं उन्होंने कहा ये अनदर केस ऑफ लव जिहाद है. और धूमा के डीएसपी जो हैं नूर मुस्तफा, उनको इन्होंने इल्जाम दिया है कि ये इस मुसलमान लड़के को बचाने की कोशिश कर रहा है. बहरहाल वो बच्ची तो हॉस्पिटल में मर गई 5 दिन के बाद, और लेकिन पुलिस ने इस लड़के को जो है अब पकड़ लिया है. इसके साथ साथ एक और भी केस जो है रजिस्टर जो किया गया है यहां पे वो है, एक इंस्पेक्टर हैं अनूप कुमार मौर्या. यानी आप देखें कि लोग पुलिस के पास जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो ये पुलिस साहब ने क्या किया, अनूप कुमार मौर्या साहब जो हैं इनके पास एक खातून गई कि मेरी बेटी जो है उसको रेप किया गया है और उसको बचाने की जरूरत है. तो इसने जो है उसकी मां को ही रेप कर लिया, उस बच्ची की मां को, और उसको कहा कि दिस इज कॉल्ड लव, दिस इज नॉट रेप. तो वो भी जो है औरत जो है 45 ईयर्स की, उसने अब फिर एक और जगह पे जाके इसी पुलिस अफसर के खिलाफ जो है अब रिपोर्ट लिखाई है और कहा है कि मैं तो अपनी बेटी के खिलाफ गैंग रेप का केस करने गई थी और उसने उल्टा मुझे किया. बहरहाल इसको पकड़ लिया गया, अनूप कुमार मौर्या जो है इनको भी पकड़ लिया गया है. अफगानिस्तान की भी हालत कुछ अच्छी नहीं है जी. अफगानिस्तान के जो इलाके हैं ये कुनूर, लखमर, लोगर, वर्दक, नंगरहार, नौरिस्तान, पाटिका, परवान, यहां पे भी बेतहाशा फ्लड्स आए हुए हैं और उन फ्लड्स ने जो है यहां पे हालत काफी खराब की हुई है. मुल्ला अब्दुल लतीफ मंसूर, एक्टिंग मिनिस्टर ऑफ एनर्जी और वाटर जो है, उन्होंने कहा जी कि हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे जो नेचुरल कलेमिटीज हैं वो यहां पर आ रहे हैं. अभी फ्लड्स आए हुए हैं, इससे पहले जो थे आया था ड्राउट आया था और अर्थक्वेक आया था जिसमें 1000 लोग मर गए थे. और इस वक्त जो है 329 स्मॉल डैम्स, 441 मेजर वाटर चैनल्स सब जो हैं वो डैमेज्ड हैं. 600,000 एकर्स ऑफ लैंड जो है वो अब यूज के काबिल नहीं है. 180 लोगों की डेथ हो चुकी है और 8,000 लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं. तो उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा कि एक तो आपने हमारी इंटरनेशनल एड भी बंद कर दी है और वो और भी आप हमको पैसे नहीं आ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। यूनाइटेड नेशंस की ने एक जॉइंट जो है वो इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें कि कहा गया है कि पाकिस्तान को 160 मिलियन US डॉलर्स जो है रिलीफ में देने की जरूरत है क्योंकि जो फ्लड्स ने तबाही वहां पर मचाई है उसके लिए जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत है इस हेल्प की तो सारी दुनिया को हेल्प करने की जरूरत है। इस मौके पे इन की नोट एड्रेस फॉरेन मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी उन्होंने कहा जी कि ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ी कलेमिटी है जो कि एक पूरी सदी के अंदर आई है जिसमें कि बहुत हार्ट रेंचिंग सीन्स ऑफ लॉस डैमेज और डिस्पेयर है और हम जो है रेस्क्यू और रिलीफ का काम जारी रखे हुए हैं लेकिन मिड जून से जो मॉनसून रेन्स हो रही हैं उसने हमारे मुल्क में बहुत तबाही मचाई है तो पाकिस्तान को हेल्प की जरूरत है। तो मैं पूछना चाहती थी पायन आपने कितना डोनेट किया अपनी जेब से जरदारी साहब तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दुनिया से भीख का फिर से मांग रहे हैं अपनी जेब से भी कुछ वानी दे दें। बहरहाल जी आपने कोई नहीं दी तो ये जनाब आज वहां पे हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कराची के अंदर जो है जी उन्होंने ये जो अभी आरफाबाजी थोड़ी सी बात बता रही थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है सिंध असेंबली में हलीम आदिल शेख उनको जो कहा गया था कि पुलिस कस्टडी में देंगे फिजिकल रिमांड पे उसके लिए ना बोल दिया है क्योंकि उन्होंने कहा हलीम आदिल शेख ने कहा कि पुलिस वालों ने मेरे पे बेतहाशा जुल्म किए हैं मुझे मारा पीटा है और मुझे मेंटली और फिजिकली जो है ये टॉर्चर किया है और इनका केस जो था वो एंटी एनक्रोचमेंट फोर्स के पास था और क्योंकि इनको कहा गया था कि आपको हम लैंड ग्रैबिंग के केस में ट्राई कर रहे हैं और इनके खिलाफ जो है वो एफआईआर लिखाई गई थी। शेख साहब के जो काउंसिल हैं उन्होंने कहा कि ये जो ताबेदार हैं बहुत सारे हाथ जोड़ के जो बड़ों के पास खड़े हैं इन्होंने ये केस रखा है वरना ऐसी कोई बात नहीं है मेरे क्लाइंट ने ऐसी कोई वो नहीं की है और ये जो फिजिकल रिमांड है ये इसका देने का तो कोई मकसद ही नहीं बनता है। तो कोर्ट ने दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कहा कि भाई फिजिकल रिमांड ना दें क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा बीमार है इनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स और चीजें सामने आई हैं उससे यही लगता है तो आप इनसे पूछताछ करें लेकिन मैं हम रिमांड की इजाजत नहीं दे सकते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जी जो शहबाज गिल की जो थी बेल प्ली सेडिशन केस में उसको रिजेक्ट कर दिया है और सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो हैं जफर इकबाल साहब उन्होंने आर्ग्यूमेंट सुने दोनों साइड के और उन्होंने कहा जी कि ये टीवी के एक प्रोग्राम के अंदर जो इन्होंने कंट्रोवर्शियल कमेंट्स दिए थे जिसकी के बाद इसको इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़ा था बनीगाला से अगस्त 9 में उनको उसमें इनको बेल नहीं दी जा सकती है क्योंकि इन्होंने अंडर सेक्शन 161 जो है जो कोई गलतियां थी उनको दुरुस्त कर लिया गया क्योंकि पुलिस के बारे में कहा था इनके काउंसिल ने कि मुझे एविडेंस दिखाई नहीं गई है शहबाज गिल की तो पुलिस ने दे दी तो कोर्ट ने कहा कि अब तो वो सेक्शन 161 भी नहीं रहा सारी चीजें भी सामने आ गई हैं और इन्होंने ये बातें की भी हैं तो इनके लॉयर ने कहा कि वो कुछ बदनीयती में उन्होंने नहीं की और इनको इनका मकसद ट्रीजन कमिट करना नहीं था तो इसलिए ये सारे ट्वीट्स जो हैं आर्मी हेलीकॉप्टर इंसिडेंट के ऊपर जो इन्होंने किए थे वो बिल्कुल इनकरेक्टली किए गए हैं या तो इनके हैं नहीं या उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है लेकिन फिर भी बेल इनकी जो है खारिज नहीं की गई है। लाहौर के अंदर लाहौर जो है जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के हेड हैं जिनका के नाम है प्रेसिडेंट है इनके नुमान कबीर साहब उन्होंने लाहौर को आज कहा है और लार्जर तौर पे पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी कहा है कि चूंकि मुल्क में सब्जियों की कीमत बेतहाशा ऊपर हो गई है इसलिए हमको इंडिया से लाने की जरूरत है और सितंबर अक्टूबर नवंबर में तो ये प्राइसेस और भी ऊपर चली जाएंगी और हमारे ट्रेडर्स जो हैं इस वक्त का फायदा उठाते हुए बेतहाशा प्रॉफिट जो है वो कमा रहे हैं। टोमेटोज की कीमत जो ऑफिशियल है वो 190 रुपीज पर केजी है लेकिन ट्रेडर्स उसको 250 रुपीज पर केजी बेच रहे हैं। अनियंस की कीमत जो है ऑफिशियल तौर पे 300 है 320 पे बेच रहे हैं 300 पे बेच रहे हैं हालांकि ऑफिशियल प्राइस जो है वो 290 है पर केजी। पोटैटोज जो हैं उनको 100 रुपीज पर केजी है लेकिन उसको जो है ये 140 रुपीज पर केजी पे बेच रहे हैं। इसी तरह गार्लिक जो है उसकी भी कीमत जो है वो 200 से नीचे है और ये 250 रुपीज पर केजी बेच रहे हैं तो इसलिए जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा सस्ती सब्जियां हमें मिलेंगी वो हम लेकर आएं तो अब देखेंगे क्या होता है। फिल्म मेकर जो अनुराग कश्यप हैं उन्होंने आदित्य चोपड़ा के बारे में कहा है कि यश राज फिल्म्स को इन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और उसको ये हैंडल नहीं कर सके हैं, क्योंकि यशराज मूवीज की जो बैक टू बैक फिल्म आई है सम्राट पृथ्वीराज, जैश भाई जोरदार और शमशेरा, ये तीनों की तीनों जो हैं ये फ्लॉप हुई हैं, जिसके ऊपर अनुराग कश्यप ने कहा कि इतनी बड़ी एम्पायर को चलाना आसान नहीं है और ये जो है इन्होंने इसको बर्बाद कर दिया है। इसके ऊपर जो है अनुपम खेर साहब अब सामने आए हैं, हालांकि अनुपम खेर साहब ने कहा था कभी कि यशराज फिल्म्स जो है मुझे अब हिस्सा नहीं अपनी फिल्मों में देते हैं, फिर भी उन्होंने कहा जी ये इतनी बड़ी एम्पायर को रन करना इतना ईजी नहीं है और लोगों के लिए, लेकिन कॉमेंट करना बड़ा ईजी होता है और एनी वेज अनुराग कश्यप जो है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो ह्यूमन बिहेवियर या उनके ऊपर जो है कोई कॉमेंट्री कर सके, तो इसलिए ऐसे कॉमेंट्री नहीं करनी चाहिए। अली अब्बास जफर की जो मूवी है जनाब जोगी, जोगी का ट्रेलर आ गया है और इसके अंदर देखा जा रहा है कि 1984 जो सिख राइट्स हुए थे उसके ऊपर है। इसके अंदर दिलजीत दोसांझ है, मोहम्मद जीशान अयूब, कुमुद मिश्रा, हितेश तेजवानी है और इसके अंदर वो बता रहे हैं कि कैसे ये एक फैमिली और फ्रेंड्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जब राइड्स चल रहे थे और उसमें इनको कैसे हरेस किया जा रहा है। खासतौर पे जो ट्रेलर में एक बस का सीन दिखाया गया है जहां पे उनको कहा जा रहा है कि तुम सरदार मुंडे यहां पे नहीं रह सकते और इन ऑल दोज थिंग्स, तो उसके ऊपर ये फिल्म है जो आने वाली है। तो अब लोग जो हैं मिला जुला इसके ऊपर है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्यादा ही इसको जो है वो हाइप दे दी जा रही है और कुछ कह रहे हैं जी कि ये बिल्कुल सच के ऊपर है। हॉकी कनाडा जो है जी उसने आज कहा है कि वो अपने प्रेसिडेंट और सीईओ स्कॉट स्मिथ को जो है हर हाल में बैक करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि हॉकी कनाडा के ऊपर बहुत सारे सेक्सुअल एलिगेशंस आ गए थे हैरेसमेंट के। इसमें एक लड़की जो थी उसने कहा था कि 2018 की जो मेंस जूनियर टीम थी उसने लंदन में जो गाला हो रहा था उसके अंदर मुझे असॉल्ट किया था सेक्सुअली, उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई थी जिसके के बाद कहा गया था कि जी हॉकी कनाडा ने लोगों को पैसे देके हश करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अब माइकल ब्रिंड आर्मर उन्होंने जो रिजाइन कर दिया था अगस्त 6 को ये इन सारे एलिगेशंस के बीच में, लेकिन जो इंटरिम बोर्ड के चेयर हैं की हैं जो एंड्रिया स्किनर उन्होंने कहा कि नहीं हम इनके पीछे खड़े हुए हैं और हमने इन्वेस्टिगेशन बिठाई हुई है, तो इन्वेस्टिगेशन के जो रिपोर्ट्स आएंगी उसमें इनका कुछ लेना देना नहीं है, उसके ऊपर फिर हम अमल करेंगे। एंजना फॉर्मर यूएस चैंपियन जो हमारी बियांका एड्रियोस्को है, वैसे तो उन्होंने आज हरा दिया है इनको जो है अपनी जो थी अपोनेंट थी उनको इन्होंने हराया है हार्मनी टैन को 603661। लेकिन बड़ा मजे का ये वाकया ये हुआ कि इन्होंने नाइकी का ड्रेस जो पहना हुआ था तो बार बार इनकी स्कर्ट उड़ रही थी जिसकी की वजह से ये अपनी शॉर्ट्स नहीं खेल रही थी, तो इन्होंने नाइकी के उस ड्रेस के बारे में कह दिया कि इट्स अ वेरी वेरी बैड ड्रेस और अगर मैं ठीक से नहीं कॉन्सेंट्रेट कर सक रही हूं तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स नाइकीज फॉल्ट, इट्स सो बैड। और फिर ये उधर गई उसके पास रेफरी के पास, उन्होंने कहा कि मैं चेंज करके प्लीज आ सकती हूं, देन शी वेंट एंड शी चेंज्ड एंड केम बैक अगेन इन द नाइकी ड्रेस। तो उसके ऊपर नाइकी ने बड़ा माइंड किया, उन्होंने कहा जी बजी आपने ये क्या बातें की हैं, तो इन्होंने फिर अपोलोजाइज किया, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं आई शुड नॉट हैव कॉमेंटेड लाइक दिस। पीसीबी के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर नजीबुल्लाह सोमरो, उन्होंने कहा जी कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनको अब लंदन भेजा जा रहा है इलाज के लिए और वहां पे इनको अनइंटरप्टेड और डेडिकेटेड नी स्पेशलिस्ट केयर चाहिए जो कि लंदन में बेस्ट होती है, उसके लिए इनको भेजा जा रहा है जिसके के बाद ये फुल रिकवरी के बाद ही वापस आएंगे और वहां पे पीसीबी का जो मेडिकल एडवाइजरी पैनल है वो भी रहेगा और वहां पे उसके अंदर जो लंदन बेस्ड डॉक्टर इम्तियाज अहमद और डॉक्टर जफर इकबाल हैं वो सारी चीज को फोरसी करेंगे, तो जब तक ये पूरी इनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हो जाती ये लंदन से वापस नहीं आएंगे। और आज को जो है अफसोस की खबर है कि हमारे जो हॉकी के ओलंपियन थे मंजूर जूनियर साहब जिनका कैसल नाम मंजूर हुसैन था उनकी आज डेथ हो गई है। ही वाज जस्ट अबाउट 64 और वो ही वाज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, इनको रश किया गया था हॉस्पिटल में लेकिन फिर उनकी हालत जो है वहां पे खराब हो गई थी। ये उस हॉकी टीम के अंदर थे जिसने ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल जीते थे रिस्पेक्टिवली 1976 और 1984 ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए, और इनका जो खास तौर पे एक्सेप्शनल जो स्टिक जो इनका वर्क था वो बहुत ही ज्यादा एडमायर दुनिया में किया जाता था। इन्होंने ज्वाइन किया था पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को 2019 में एज चीफ ऑफ जूनियर सिलेक्शन कमेटी और ये चाहते थे कि यंग टैलेंट को लाएं लेकिन कोविड आ गया तो ये कुछ इंटरनेशनल कंटेस्ट नहीं करा सके, उसके बाद इनको चीफ सिलेक्टर बना दिया गया था नेशनल सीनियर टीम का और लेकिन फिर कुछ दिन पहले इन्होंने बिगनिंग ऑफ द ईयर इन्होंने कहा था कि मैं अब पाकिस्तान ये जो हॉकी फेडरेशन है इसके साथ नहीं चल सकता हूं, कुछ उन्होंने अपने रीजंस दिए थे और ये हट गए थे। बहरहाल लोग आज इनको जो है याद कर रहे हैं। एंड जनाब ऑन सेप्टेम्बर 7 पाकिस्तान की जो विमेन फुटबॉल टीम है वो इंडिया का मुकाबला कर सकती है इन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन विमेन चैंपियनशिप में। 8 साल के लंबे अरसे के बाद यूएई बेस्ड मरिया खान, 31 ईयर्स उनकी एज है, शी इज गोइंग टू लीड द पाकिस्तान टीम और वो कह रही हैं कि वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉम्पिटिशन। तो गर्ल्स वे टू गो, ऑल द बेस्ट। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज इसके बाद आएगी स्पेशल रिपोर्ट बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान का जो आज मैच था एशिया कप में 2022 में। जनाब आज फिर से जो है अफगानिस्तान ने हरा दिया बांग्लादेश को 7 विकेट से और ये इनकी एशिया कप में दूसरी जीत है। पहला जो मैच इनका श्रीलंका से हुआ था उसको भी हराया था, तो अब ये दूसरा इन्होंने बांग्लादेश को हराया है। ये मैच शारजा स्टेडियम में हो रहे थे, शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, और इनके बॉलर्स ने अफगानिस्तान के जबरदस्त बॉलिंग करते हुए 127 रन्स पे इनको आउट कर दिया था और इनका टारगेट था 128 रन्स जो कि इन्होंने 131 बना के थ्री आउट हुए थे इनके 18.3 ओवर्स में पूरा किया। नजीबुल्ला जदरान जो थे उन्होंने 43 नॉट आउट बनाए ऑन 17 बॉल्स और नजीबुल रहमान राशिद खान ने 3 विकेट्स ली और जो है उसके अलावा जो बांग्लादेश की तरफ से एक ही लड़का मुसद्दक अल हुसैन जो था इनका टॉप स्कोरर रहा 48 नॉट रन ऑफ 31 बॉल्स। तो जनाब ये रही और उसके बाद अब हम शुरू करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट ऑन नेवी सील्स। अच्छा जी, आपको लगता है जी कि नेवी सील्स जो कि आपको हॉलीवुड की फिल्में अगर आप देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं ऊंचे लंबे 6.5-6 फुट के मोटे मोटे बड़े बड़े डोलों वाले लड़के जो हैं वो ऐसे जो हैं जो जिनके हाथ साथ नहीं लग रहे ऐसे बड़े बड़े गन्स पकड़ के जो हैं वो चल के जाते हैं और वो जाके और वहां पे सारी जहां पे जो कहते हैं जी एनिमी टेरिटरी में जाते हैं और जाके तबाह करते हैं और वो क्या उसके लिए नेवी वाले कहते हैं जी हम इनको देते हैं एक ट्रेनिंग से गुजारते हैं और उस ट्रेनिंग का नाम ही है हेल्स वीक। उस हेल्स वीक में ना तो इनको सोने देते हैं ना ही इनको जो है कोई और फैसिलिटी देते हैं, खाना कम देते हैं, बहुत ज्यादा मेंटल टॉर्चर देते हैं या ठंडे पानी में जहां पे इनको हाइपोथर्मिया भी हो सकता है उसमें इनको डाल देते हैं और उस तरह की ट्रेनिंग्स में से इसमें गुजारते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की आज की ये रिपोर्ट बताती है कि ये ट्रेनिंग इतनी कोई खतरनाक है कि इसमें बहुत सारे लड़के मर जाते हैं और वो कहते हैं जी कि ये इसका जिस वक्त जो है जिक्र किया गया तो इनके एक इंस्ट्रक्टर हैं जो कि एक्स सील थे डेविड गॉगिंस, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जब उन्होंने छोड़ दिया था सील्स को, वो इतने फेड अप हो गए थे क्योंकि इनको खतरनाक तरीन मिशंस जो इराक में और अफगानिस्तान में और सीरिया में जो होते हैं उसके अंदर इनको भेजा जाता है और एक एक आदमी जो है कई कई 100 आदमियों को एलिमिनेट करने की ताकत रखता है तो ये सील्स जो होते हैं इनके उसको, तो इनकी इन्होंने जो किताब लिखी थी डेविड गॉगिंस ने अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि एक लड़के की डेथ हो गई जिसको कि ट्रेनिंग को कहते हैं बड्स ट्रेनिंग, तो बड्स ट्रेनिंग में हो गई तो इन्होंने इंस्ट्रक्टर जो था वो जब आया तो क्लास में लोग जो हैं बच्चे सारे बड़े जो हैं सील्स जो थे वो बड़े दुख में बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है अपने मुल्क के लिए अगर किसी को अपनी जान भी देनी पड़ती है तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये एक था इसकी तरह के और भी बहुत से मरेंगे लेकिन तुम लोगों का फोकस अपने गोल पे होना चाहिए। तो यानी इतनी हार्टलेसनेस वो कहते हैं इतनी इनसेंसिटिविटी जो है वो दिखाई जाती है। उन्होंने कहा जी कि ये जो बड्स का जो ये जो प्रोग्राम है डिमोलिशन सी अंडर वाटर डिमोलिशन सील ट्रेनिंग बड्स ये जो है इसमें कई कई घंटे अंडर वाटर लड़कों को रखा जाता है और उनको कहा जाता है कि अगर इधर से गुजर के तुमको जाना पड़े एनिमी टेरिटरी में बगैर बताए तुम कैसे करोगे। तो
मगर ये इनको बिफोर दे ज्वाइन टू बी अ सील दे नो एग्जैक्टली व्हाट
बट द थिंग इज के वो कहते हैं कि नो मैटर हाउ स्ट्रांग यू आर इट्स नॉट नेसेसरी कि इस ट्रेनिंग के अंदर आप सर्वाइव कर सकेंगे।
एग्जैक्टली
क्योंकि वो कहते हैं जी कि मिलिट्री के जो आम लड़के हैं उनको सील्स के लिए नहीं किया जाता है।
ये जो आप बता रही हैं तो इसका मतलब ये है कि जो अगर जैसे मैंने जाके आज ज्वाइन करना है तो मुझे पता है कि हाउ हार्डशिप इज गोना बी और आई मे नॉट सर्वाइव।
Yes, that's
so
right.
I know that and I sign it up for this.
Yeah. So. लेकिन वही बात है कि जिस वक्त आप साइन अप भी करने जाते हैं तो अगर मेरा कितना भी पैशन है वो टेस्ट लेते हैं और अगर उनको लगता है कि आप जो हैं उसके ऊपर नहीं उतरते तो वो आपको कहते हैं जी मिलिट्री में जाओ आप सील्स के लिए नहीं हो। लेकिन इसके बावजूद इवन इफ यू आर द फिटेस्ट अमंगस्ट ऑल द लॉट, जरूरी नहीं है कि आप इसमें बचेंगे, हो सकता है ट्रेनिंग के बीच में आप मर जाए। तो वो कहते हैं जी कि इसके ऊपर जो है बहुत सारी सील्स के अंदर भी और बाहर से भी जो है ये आई थी इनको रिपोर्ट्स नेवी को कि ये इतना खतरनाक प्रोग्राम, आपने एनिमी को मारना है अपने बच्चों को नहीं मारना, क्योंकि बहुत यंग लड़के 22 23 24 साल के लड़के जो हैं वो जाते हैं और वो अपनी जान जो है वो दे देते हैं इसके अंदर। तो ये बहुत सारे लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया है नेवी सील्स को कि भाई आप इस सारी चीज को खत्म करें, ये ठीक नहीं है आपकी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग किसी और तरीके से दें, जो आपकी मिलिट्री की ट्रेनिंग है दैट इज हार्ड इनफ, यू डोंट रियली नीड टू गिव दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग। लेकिन वो कहते हैं जी कि नहीं, ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ये हम इसी तरह की ट्रेनिंग देंगे और सील्स जो है इसी तरह चलेंगे। नेवी के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट कहती है कि इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन कोई बंदा अगर बहुत अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स अगर कोई बंदा कोई टीचर कोई अगर चेंज ड्रास्टिक लाने की कोशिश करता है तो उसको क्वाइटली सैक कर दिया जाता है और उसको कहता है कि तुम्हारी जुबान ना खुले आइंदा, जुबान ना इसके बाद में खुले, तुमने पर्सनल रीजंस देने हैं और तुम यहां से जो है वो जा सकते हो। अच्छा जी, इसके अंदर उन्होंने आज जो बहुत बड़ी जो बातें की हैं, उन्होंने कहा जी कि ये सब तो ठीक है लेकिन जो खतरे की बात है, ये जो आप इतने जिन किस्म के लोग देखते हैं सील्स के अंदर, अलेजली न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि इनको ये जो इतने बॉडीज इनके जो है वो जिन किस्म की बनाई होती हैं, इनको स्टीरॉयड्स भी दिए जाते हैं और इनको हार्मोन्स भी दिए जाते हैं ताकि ये जिन टाइप के बने और इनके ऊपर आम जो तकलीफ है उसका असर ना होए। एंड द मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स दिस रिपोर्ट इज कि इनको ड्रग्स भी दी जाती हैं, उस ड्रग्स का इनके ऊपर इतना असर हो जाता है और इतने ज्यादा ये वो मतलब है मोटे ताजे या जसीम से कह सकते हैं आप वो बन जाते हैं कि इनके ऊपर जो आम हार्डशिप्स हैं फिर उसका कोई असर नहीं होता है। ये सोर्स ऑफ कंसर्न है ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स के लिए अमेरिका में, क्योंकि आप ह्यूमन बॉडी को मॉडिफाई कर रहे हैं या जेनेटिकली उसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं जिसकी के इजाजत ह्यूमन राइट्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इवन आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी इजाजत नहीं देता है। एंड एज अ रिजल्ट जितने भी ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स कहती है कि उसने बहुत दफा कहा है कि ये जो बर्ड्स का प्रोग्राम है जिसके के अंदर आप कहते हैं ओ जी हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और अमेरिकन जो फंस गए हैं उनको लेकर आ रहे हैं और जो खतरनाक इलाकों में जहां पे कि हमारी मिलिट्री नहीं जा सकती इनको हम भेज रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि आप इतने इनह्यूमन इनसेंसिटिव हो जाएं कि लोगों का जो है आप वो कर लें, क्योंकि वो कहते हैं कि जिस वक्त तक ये लड़के जो हैं अपनी आखिरी उम्र में पहुंचते हैं तो ये बिल्कुल फिर पागल हो जाते हैं और फिर कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप क्या करते हैं इनके साथ जब ये इस तरह का इतना जिन किस्म का ऊंचा लंबा बंदा खतरनाक किस्म का जब पागल हो जाता है फिर आप क्या करते हैं। तो उन्होंने अब इस रिपोर्ट में कहा नहीं है बट इफ यू कैन रीड बिटवीन द लाइंस कि ये खुद ही उसको एलिमिनेट फिर कर देते हैं कि उनको लगता है कि अब ये सोसाइटी के लिए खतरा बन जाएगा। तो ये जो थी आज जनाब हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी और इसकी हेडलाइन ये थी, डेथ इन नेवी सील ट्रेनिंग एक्सपोजेस अ कल्चर ऑफ ब्रूटैलिटी चीटिंग एंड ड्रग्स। ये थी जनाब तो
आज की स्पेशल रिपोर्ट और ये थी आज की न्यूज। बाकी की न्यूज इंशाल्लाह ताला कर फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे और उस वक्त तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच जी।
थैंक यू मच भाई,
थैंक यू। कुछ स्पॉन्सर्स का पैगाम लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे। 4166201778 हमारा फोन नंबर है।
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स LEDs और होम अप्लायंसेज की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड। मज़ीद तफ़सीलात के लिए कॉल करें 9054551666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
मेस्मराइज ऑप्टिकल सनग्लासेस आई ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेस।
डॉक्टर ऑन साइट, गेट योर आई साइट चेक्ड। मेस्मराइज ऑप्टिकल
मार्कम एंड शेपर्ड 1789 मार्कम रोड 4163350786।
कहते हैं कि माया को खींचे माया करकर लंबे हाथ। हैरिसन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आते हैं इनके, आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरिसन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं, बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं। कॉल हैरिसन Now 647-228-1000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
क्या बात है बेटे, बड़ी आवाज़ नजर आ रही है।
अबू जान खुदा का वास्ता, इस गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
ओ बच्चे परेशान क्यों होती हो, लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर पर। गाड़ी की नब्ज़ देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक, नए और पुराने टायर, साफ ऑयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। 21 मेलविक ड्राइव इटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान। लेजर टूथ वाइटनिंग, रूट किनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स,
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स, हेल्थी स्माइल्स ओंटारियो के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट, यूनिट 104, मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव।
कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान 9058721100। कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फॉर फ्री, डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा।
कैनेडियन इमिग्रेशन के लॉज और पॉलिसीज में मुस्तकिल तब्दीलियां आती रहती हैं, इसलिए इंतहाई जरूरी है कि आपका काम माहिराना तरीके से ताज़ा तरीन मालूमात के तहत किया जाए। मेरा नाम यास्मीन तैयबी है और मैं गुज़िश्ता 25 सालों से सिटीजनशिप, पीआर रिन्यूअल्स, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप और एजेंसी के पेचीदा केसों को कामयाबी से करके हजारों लोगों की रहनुमाई कर चुकी हूँ। आप मुझसे 9055130012 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या khairimsolutions.ca पर जाकर हमारी फर्म के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में सर्टिफाइड उर्दू टू इंग्लिश तर्जुमे की भी सहूलियत मौजूद है।
ग्रिल इन द हार्ट मिसेस सागा में ऑर्डर वाया फोन, इमरान भाई को कॉल करें।
इंतहाई लजीज बिरयानी खाना हो या फिर कढ़ाई खाना हो या फिर स्टेक्स को एंजॉय करना है तो आप ऑर्डर प्लेस कीजिए 9054058383। ग्रिल इन द हार्ट।
जी साहब नाजरीन, वेलकम बैक अगेन। एंड 6:36 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और अब मैं आपको ले चलूंगा एक गीत की जानिब और गीत भी अली जफर की आवाज में। समाप्त फरमाइए
कम सालों में जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी जिंदगी की डोरी मैंने पिया संग जोड़ी दिल झूम झूम चले झूम झूम चले सुने सुने यार दिल झूम झूम चले
Panasonic, Sharp, हर साइज से हर ब्रांड का टीवी विद द लोएस्ट प्राइसेस इन द टाउन सिर्फ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट ब्रैम्पटन या कॉल करो 905-450-2828 905-450-2828
जो है दूर रह के भी पास UBL को है उनका एहसास UBL रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ रोशन है पाकिस्तान
जश्न है आजादी का यूनाइटेड है पाकिस्तान
कर्ज से निजात के लिए एक ही नाम मोहम्मद सिद्दीक ऑल द सॉल्यूशन पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80% मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं पुरसकून जिंदगी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577
अजीत सुनते हो
अब कह भी दो
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ
मगर कब
अब कुछ कहना वहना नहीं है बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन नो ऑब्लिगेशन कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर कॉल शिराज 416-792-8792
रिंगिंग बजिंग हिसिंग टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक
बाय वन हियरिंग एड गेट वन 15% ऑफ 416-792-8792 अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन 416-792-8792
अगर हो आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर से परेशान तो कॉल करें मुझे मेरे मेहरबान बना करके दूंगा आपको ऐसा प्लान कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाएगी आसान मसला हो चाहे आपकी मॉर्गेज उतारने का बच्चों की एजुकेशन का या आपकी अपनी रिटायरमेंट का मेरे पास हैं अवेलेबल ऐसे प्लान जो मेक श्योर करते हैं कि आपको मिले अच्छी बचत लोएस्ट रेट्स क्योंकि मैं डील करता हूं तमाम की तमाम इंश्योरेंस कंपनी के साथ फायदा उठाइए कॉल करके मेरे लंबे एक्सपीरियंस का 905-607-5000 मैं हूं फजल वदूद फ्रॉम इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज सी यू सून
चलो चलिए ताजिया सब्जियां लैन अपने फार्म कैलेडन सब्जी फार्म ते आज ही आओ ते खरीदो स्पेशल डिस्काउंट ते ताजे चप्पन कद्दू किया साग पालक मेथी धनिया टमाटर प्याज हरी मिर्च बैंगन आलू गाजर ते होर दूसरियां सब्जियां ते फल भी इथे सब्जियां ते फलां दे बूटे खाद गार्डनिंग दा समान पॉट्स इंडियन तंदूर अते इंडियन बाईसाइकिल भी मौजूद है होर जानकारी लई विजिट करो कैलेडन सब्जी फार्म 12050 एयरपोर्ट रोड या फिर कॉन्टेक्ट करो 905-965-3633 That's 905-965-3633.
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है? हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं। हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। जी हाँ, 416-570-0157।
अब मॉर्गेज लेना और भी आसान। सेंट्रम फ्यूचर मॉर्गेज ग्रुप के कौकब जावेद को कॉल करें। प्राइवेट मॉर्गेज फॉर एनी पर्पसेस, कमर्शियल मॉर्गेज, इंडस्ट्रियल मॉर्गेज, फार्म एंड हॉबी फार्म, वेरी कंपैरेबल रेट्स फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मॉर्गेज, न्यू कमर्स टू कनाडा, फर्स्ट टाइम बायर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, रीफाइनेंसिंग, डेब्ट कंसोलिडेशन, असेस इन रियल एस्टेट। He will make mortgage easy for you. Kokab Javed, Mortgage Agent, 416-454-6065.
दांतों के इलाज के लिए डॉक्टर ने बिल बहुत ज्यादा बता दिया। सोचती हूँ बैक होम जाके दांतों का मुकम्मल इलाज कराऊं।
छोड़ो भाई, किंग बेस्ट स्माइल डेंटिस्ट्री को विजिट कर लो। दांत निकालना हो, क्राउन्स, ब्रिजेस, डेंचर्स, इम्प्लांट्स, बच्चों के दांतों का मुकम्मल इलाज, रूट किनाल ट्रीटमेंट और नए पेशेंट्स के लिए फ्री इलेक्ट्रिकल टूथ ब्रश भी है। कंसल्टेशन इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री।
पर जाना कहाँ है?
288 किंग स्ट्रीट वेस्ट, हैमिल्टन में, 905-521-0540, 905-521-0540।
यूज्ड कार्स खरीदें आंखें बंद करके, टेंशन फ्री के साथ। 5K मोटर्स है आपकी अपनी डीलरशिप जहां मौजूद हैं यूज्ड कार्स, SUVs और ट्रक्स। रिलायबल व्हीकल्स विद फुल इंस्पेक्शन। सेल योर कार्स फास्टर देन अदर्स एट ए बेटर प्राइस। यूज्ड कार्स के लिए 5K मोटर्स पर आज ही तशरीफ लाएं, 6237 मिस सागर रोड, 905-781-3785। फॉर डेली न्यू इन्वेंटरीज विजिट 5kmotors.com।
अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हैदर मेहदी ही आवाज से आपका सुनने का और देखने का बहुत शुक्रिया। आज हमारे मेहमान बहुत ही मशहूर और बहुत ही नामवर जर्नलिस्ट इम्तियाज गुल साहब। इम्तियाज गुल साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। क्विक इनकी मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं। इम्तियाज गुल साहब एक आम सहाफी नहीं है, रिसर्चर स्कॉलर भी हैं, एकेडेमिक भी हैं। ये अपना थिंक टैंक चलाते हैं पाकिस्तान में, सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज। 2007 से इन्होंने शुरू किया था। माशाल्लाह बहुत ही ये एक नामवर थिंक टैंक, पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में सबसे अहम तरीन थिंक टैंक समझा जाता है और दुनिया जहान में माना जाता है। इम्तियाज गुल साहब ने 5 किताबें लिखी हैं। लेटेस्ट उन्होंने चाइना पे लिखी है, आयरन ब्रदरहुड, और चाइना पे बहुत गहरी नज़र है, स्पेशलिस्ट हैं। उसामा बिन लादेन पे लिखी है, अफगानिस्तान पे लिखी है, 20 मुल्क से ज़्यादा में इन्होंने जाके पेपर्स प्रेजेंट करी हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है, लेक्चर्स दिए हैं कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में, US यूनिवर्सिटीज़ में। मेरा ख्याल है मैं यहाँ ख़त्म कर दूँ वरना ये पूरा प्रोग्राम आपकी तारीफ में चल जाएगा। तो इनका आज यहाँ इत्तेफाकन कैनेडा आए हुए, तो मैंने कहा इम्तियाज गुल साहब को हम बुलाएं और उनसे बात करें। ताजगुल साहब, थैंक यू
जी, बहुत शुक्रिया जी। मुझे तो कई बातें भूली हुई थी, आपने याद करवा दी हैं तो
अच्छा
मेरे CV के हवाले से, लेकिन बड़ी मेहरबानी आपकी,
वेरी काइंड ऑफ यू। इम्तियाज गुल साहब, हम पाकिस्तान से शुरू करेंगे और सबसे पहले जो फ्लड्स आए हैं इसके इर्द गिर्द जो आप देख रहे हैं, जो हुआ है, जरा उस पर थोड़ी नजर डालिएगा।
देखिए, उसमें बहुत सारे हमारे जो सियासी अशराफिया है, फौजी अशराफिया भी है, मिल मिला के जो लोग हमारे पाकिस्तान के गवर्नेंस के जिम्मेदार हैं, उन्होंने ये कह के इस पर थोड़ा सा पर्दा डालने की कोशिश की कि ये असल में क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। क्लाइमेट चेंज का मतलब मौसमियाती माहौलियाती तब्दीलियां हैं, बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से, या ग्लेशियर जो थे हमारे वो देर से पिघलना शुरू हुए। बिलाशुबा ये तो एक वजह है, दुनिया भर में तूफान साइक्लोन्स आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कहते हैं बाबा आदम निराला है, आपको भी मालूम है कि ऐसी ऐसी जगह हैं जहां पे हमारे सरकारी इदारों ने, अब नाम मैं नहीं लेता, और हमारे बड़े बड़े सियासतदानों ने अपने इख्तियारात का असर नफूस का इस्तेमाल करते हुए दरियाओं के रास्ते में تجاوزات کھڑی کر دی، بڑے بڑے پلازے بنا لیے. آپ نے وہ مناظر دیکھے ہوں گے جو کلام کے دو ہوٹل جس طرح نیچے آئے ہیں، ایک ہنی مون ہوٹل تھا. 2010 میں بھی اسی مقام پہ یہ ہوٹل منہدم ہوا تھا سیلاب کی وجہ سے، اور اب پھر وہی کام ہوا. اس لیے کہ جب اوپر سے پانی آتا ہے وہاں بڑی تیز رفتاری سے آتا ہے، لیکن جب اس کا رستہ بند ہوتا ہے تو وہ اور زور سے آ کے ٹکراتا ہے. اس وجہ سے اب خیبر پختونخوا سے، یعنی ہمارے مشرق جو شمالی علاقے ہیں وہاں سے شروع ہوا، اور دیکھتے دیکھتے اس نے کتنی تباہی مچائی ہے. اور ایک بڑے دکھ کی بات ہے، اس میں ہماری عدلیہ بھی برابر کی شریک ہے. نوشہرا میں ایک حفاظتی دیوار بنائی گئی کوئی 5-6 سال پہلے، کیونکہ جو ہی دریا سندھ کا لیول بڑھتا ہے تو براہ راست پانی جو ہے وہ نوشہرا میں داخل ہو سکتا ہے. اب وہ ایک چھوٹا سا مختصر سا حصہ تھا، 1-2 کلومیٹر کا. وہاں پہ مالکان نے اس کے خلاف سٹے آرڈر لے لیا کہ آپ یہاں دیوار نہیں بنا سکتے. عدالت نے سٹے آرڈر بھی دے دیا. اب 2 دن پہلے جو سیلاب آیا ہے زیادہ تر پانی اسی علاقے میں گیا جہاں دیوار نہیں بنی ہوئی تھی. تو یہ ہمارے ملک میں یہ ہو گیا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ بھی انتظامی امور میں مداخلت کر رہی ہیں. انتظامیہ جو ہے وہ پیسے لے کے این او سیز جاری کر رہی ہے، اپروولز کر دیتے ہیں ایسی بلڈنگز کی، ایسی عمارات کی جو کہ نہیں ہونی چاہیے. سو اس کی وجہ سے بھی نا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے، اور اس میں میرا خیال ہے 70-80% جو حصہ ہے وہ ہمارے اپنے لوگوں کا ہے. کہ ہر حکمران آتا ہے ڈیم 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 کرتے ہیں، ڈیم ایک نہیں بناتے. حالانکہ دیکھیے نا 35-36 ملین ایکڑ فیٹ پانی مانسون کی بارشوں کی وجہ سے وہ ہر سال سمندر میں بہ جاتا ہے
سکھر سے.
اب تصور کریں کہ اگر ہمارے پاس سائٹوں پہ ڈیم بنے ہوتے جس کو آبی ذخائر کہتے ہیں، ڈیم بھی اس طرح کا نہیں جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے، بلکہ اگر ذخائر بنے ہوتے تو اس سے زیر زمین پانی کا جو سطح ہے انڈر واٹر ٹیبل جس کو کہتے ہیں وہ بھی بہتر رہے گی، پانی بھی مہیا رہے گا، ضرورت پہ ہم وہاں سے لے سکتے ہیں، جبکہ سیلاب کا پانی بھی وہ ابزارب کرتا ہے. تو یہ بدقسمتی ہے، بہت سارے اس میں ایشوز آ گئے ہیں.
اور اچھا دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں، پھر اسی پہ تھوڑی سی آگے بات کرتا ہوں. کالابار ڈیم کے آپ نے جو کہا نا یہ 35 ملین کیوسیکس پانی سکھر سے جاتا ہے، دس از اکوولنٹ کے 6 کالابار ڈیم اگر ہونا تو یہ 6 کالابار ڈیم اگر بنے ہوتے تو یہ پانی اس میں رہ سکتا تھا. دوسری آپ کو ایک اسٹیٹسٹک بڑی انٹرسٹنگ دوں، 1990 سے لے کر 2022 تک ہمارے ارد گرد جتنے ممالک ہیں اور افریقہ میں صومالیہ، انہوں نے اپنے پانی کو ذخیرہ کرنے کے جو ڈیمز بنائے ہیں دگنے تگنے چوگنے، کئیوں نے 400-500% زیادہ کریں. پاکستان کی وہی ہے جو 1990 میں جو تھی نا ہمارے، اتنے ہی پرسنٹیج ہے. اب
انڈیا میں کوئی 450 کے قریب ڈیمز بن رہے ہیں،
جی
اس میں آبی ذخائر بھی ہیں، اس میں بجلی پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے.
جی
اور لے دے کے پھر ہمارے حکمران جو بھی حکمران آئے وہ الزام، یا ہمارے حکام خاص طور پہ الزام وہ ڈال دیں کہ بھارت ہمارا پانی چوری کر رہے ہیں. بھئی آپ اپنا پانی مینج نہیں کر سکتے ہیں اور الزام آپ دوسرے پہ لگا دیتے ہیں.
ٹھیک، اس پہ میں کالاباغ پہ اگر ٹائم رہا ضرور بات کروں گا، بٹ آئی وانٹ ٹو گو ٹو دا کرنٹ فلڈز. ایک بڑا انٹرسٹنگ ہم نے فینومینا دیکھا کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم پیسہ جو ہے وہ حکومت کو نہیں دیں گے، حکومت کے فنڈز کو نہیں دیں گے، ان کے بینک کا ہم پیسہ دیں گے عمران خان کو. اور انٹرسٹنگلی ابھی ٹیلیتھون انہوں نے کی پرسوں کل، اور اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ 5 بلین روپیز کی پلیجز ہوئی ہیں اور اکٹھا ہوا ہے. اور ابھی مجھے ایک ایئر فورس کے بڑے سینئر افسر نے ایک میسج بھیجا کہ ان کے بچے باہر تھے، وہ کریڈٹ کارڈ سے پے کرنا چاہ رہے تھے اور وہ کریڈٹ کارڈ ریجیکٹ ہو جاتا تھا. انہوں نے کریڈٹ کارڈ کمپنی سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان سے بلاکیج لگی ہوئی ہے، جتنے بھی یہاں سے اس وقت سے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹس پاکستان جا رہی ہیں وہاں سے ریجیکٹ ہو رہی ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ یہ کسی خاص وجہ سے روکی گئی. کچھ کہتے ہیں کہ یہ ڈیلیبریٹلی گورنمنٹ نے بینکس کے اندر یا جو بھی آپ کا گیٹ وے تھا، پیمنٹ گیٹ وے جو کریڈٹ کارڈ کا، جب عمران کی ٹیلی تھون ہو رہی تھی اس کو بلاک کر دیا.
یہ تو اس طرح کی بہت ساری خبریں آئی ہیں، خود ہمارے اسلام آباد سے اس قسم کی شکایات آئیں، ہمارے دوست ہیں 3-4 انہوں نے یہ لکھا کہ وہ جب جاتے ہیں جمع کرانے کے لیے کہ بینک آف پنجاب یعنی پنجاب حکومت یا خیبر پختونخوا حکومت، تو وہاں پہ جو بینکوں میں افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ وہ پیسے چلے جائیں وزیر اعظم کے فنڈ میں.
ریئلی یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں,
ایک صاحب ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ جب انہوں نے رسید دی, میں نے رسید پہ دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا وزیر اعظم فنڈ, یعنی پی ایم فنڈ. کبھی ہم نے اور آپ نے اس پہ دستخط بھی نہیں کی, دستخط بھی وہ صاحبہ اس پہ نہیں کر رہی تھی. تو یہ اگین بڑا ایک المیہ ہے ہماری سیاست کا کہ عمران خان سے کریڈٹ لینے کے لیے جو سرکاری بینک ہیں ان کو اس طرح سے کوئی ہدایات دے دی گئی ہیں کہ کوشش کریں. اب عام آدمی جاتے ہیں, اتنی پرواہ کس کو, آپ بھی جب جائیں گے میں بھی, جلدی میں ہوتے کہ ہاں جی ہم نے پیسے جمع کرانے ہیں, ہم تو ہو سکتا ہے کہ رسید پہ نظر بھی نہ ڈالیں. تو یہ بالکل ایک جینوئن شکایت ہو سکتی ہے اور اس کا اپنا یہ مذاق اڑوانے والی بات ہے جی, اس میں کوئی ان کی کوئی فتح نہیں ہوتی ہے اخلاقی فتح, بلکہ الٹا منہ ہی کالا ہوتا ہے جو بھی یہ کام کر رہے ہیں.
تو ایک بھاری سوال اب یہ عمران سے, عمران کا فینومنا ہم دیکھ رہے ہیں 1996 سے, مجھے یہ سمجھائیں, اور یہ میں بھی ریسرچ کر رہا ہوں کہ یہ کیا فینومنا ہے عمران کا, یہ کیا وجہ ہے کہ یہ آدمی اکیلا نکلا اور 25-26-27 سال میں اس نے یہاں تک پہنچا, ایک ٹو پارٹی سسٹم کو تہس نہس کر دیا اور ہر رنگ و نسل, خاص طور پہ عورت اور مرد, جو کہ ینگ سے ینگ, بوڑھے سے بوڑھا, غریب امیر, رورل اربن, مڈل کلاس, لوور کلاس, رچ کلاس, یہ کیا ہے اس کو, کین یو ایکسپلین دس فینومینا؟
دیکھیے جی, میں تو اس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں اس طرح کہ میں 13 سال کا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم بنے. وہ ایک شعور لے کے آئے تھے, غریب آدمی کو بہت ایک شعور انہوں نے دیا کہ بھئی آپ بھی برابر کے شہری ہیں. میں اس لیے ریلیٹ کرتا ہوں اس وقت کے ساتھ کہ مجھے معلوم ہے ہمارے والد صاحب ایک نجی ادارے میں کام کرتے تھے, ہمارے گھر کے سامنے ایک ہوٹل تھا. تو یہ جب بھٹو صاحب آ چکے تھے, 5-6 مہینے گزر چکے تھے, ان کی تقریریں وغیرہ لوگوں نے سنی ہوئی تھی, میں ایک دن حیران رہ گیا, اسکول میں تھا 13 سال کی عمر, دیکھا کہ اس ہوٹل کا مالک اس کے سامنے ان کا باورچی جو تھا نا اس کے ساتھ والی کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا. اس بات کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا, یہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس سے پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ باورچی ہے یا اسسٹنٹ ہے کچن کا, وہ آ کے مالک کے سامنے کرسی پہ بیٹھ جائے گا. اب عمران خان نے کیا کیا؟
اچھا, سو دیٹ واز ون فینومینا.
میں جی, اب 50 سال کے بعد پاکستان ایک اور ریولوشن میں سے, ایک انقلاب میں سے میرا اپنے خیال میں گزر رہا ہے, وہ یہ کہ عمران خان نے جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈرل کی ہے بات, وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پاکستان آج جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے. یعنی اگر پاکستان کے رول آف لا, اکنامک انڈیکیٹرز, ہیلتھ کے, ایجوکیشن کے خراب ہیں, وہ ان دو جماعتوں کی وجہ سے ہیں جو بار بار جمہوریت کا نام لے کے اقتدار میں آتے ہیں, لوٹ مار کر کے اپنے اثاثوں میں اضافہ کر کے ملک کو غریب کر کے چلے جاتے ہیں. اب یہ جو شعور ہے اس نوعیت کا کہ ان لوگوں کے جو سٹیٹس کو کے, جو ہمارے روایتی سیاسی جماعتیں, اس کے خلاف جو ایک نفرت پیدا ہوئی ہے, ان سے ایک ڈس لائک ان کے لیے پیدا ہوئی ہے, وہ اس کا سہرا جو ہے وہ عمران کریڈٹ, عمران خان کی طرف جاتا ہے, چاہے وہ مسلم لیگ سے ہیں, چاہے پیپلز پارٹی سے ہیں, پی ٹی آئی کے تو ظاہر ہیں ہی ہیں, ہمیں آپ کو بھی لوگ یوتھیا کہیں گے, مطلب یہ تو ویسے سلام ہے ان لوگوں کو کہ جو یہ برانڈنگ کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کی جو کہ ریشنل بات کریں. یعنی آپ, ہم تو سوشل سائنٹسٹ بھی ہیں ایک لحاظ سے, ہم نے جو تھیریز ہیں, ریولیوشنز ہیں, ان کی تاریخ پڑی ہوئی ہے, لیکن واحد جو فینامنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ عزت کے ساتھ رہنا سیکھیں. عزت آپ کی اسی وقت ہوگی کہ جب رول آف لا ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں, میں 27-25 سال کی عمر میں جرمنی آیا, وہاں پہ میں نے دیکھا کہ رول آف لا کیا ہوتا ہے. عام آدمی کی بھی اتنی عزت ہے جتنی ایک مرسیڈیز ایک چیف ایگزیکٹو کی ہے, یا سیاستدان سے زیادہ جرمنی میں نے دیکھی عام آدمی کی عزت ہے, اس کا زیادہ احترام ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ اس وقت کئی لوگوں کے ذہنوں میں چلی گئی ہے, اور لوگ بےچارے تڑپ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے, ان کی حالت وہی کی وہی ہے. مطلب جو پٹواری عام لوگ تھے وہ ادھر کے ادھر کھڑے ہیں, یہ سیاستدان آتے, ان کے بچے, بھانجے, بتیجے, ان کے دوست, اب آپ ان کی جائیدادیں بن گئی ہیں, امپائرز انہوں نے کھڑی کر دی ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے عمران خان نے لوگوں کو دی ہے, اور اس نے گیلونائز کر دیا ہے لوگوں کو.
اچھا اسی کو آگے لے کے چلنا ہے، یہ آپ نے بڑی بات جو جرمنی کی نا، میں آپ سے ملنے پہلے میں تھوڑا سا اور اس پہ میں بھی ریسرچ کر رہا ہوں، آپ نے آپ کو بھی بہت جو آپ نے کہا سوشل سائنٹسٹ، میں دیکھا تھا کہ یہ جب ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں نا، ڈیموکریسی